लगभग अभी एक दो दिन की रही है। सेठ जीरा लेख क्या सुना होना आज ही सेठ जीरा बटो गीता भवन से एक नए रजिस्टर आई। मैं देखा अभी पूरी होगी आई पूरी होगी कहीं सुना होना सेठ जी की बात क्या सुना तो घना ही है पर सेठ जी ने कोई बात क्या सुना होना आज ही जाएगी आज। दूसरों की निंदा करने से उसका पाप अपने को भोगना पड़ता है इसलिए व्यर्थ में ही नया पाप क्यों कमावे। हम निंदा के लायक काम किसी ने किया निंदा हम करें उसका फल अपने को भी भोगना पड़ेगा। ये व्यर्थ में ही पाप कमावे व्यर्थ में। यदि शीघ्र पवित्र होना चाहते हो और जल्दी से जल्दी अपना कल्याण चाहते हो तो हम एक बात बताते हैं है बड़ी कठिन पर हिम्मत रखी जाए तो लाभ बहुत है। क्या कि दो चार निंदक अपने पास में बसाओ और वो जो हमारी निंदा करे उस निंदा को सुनो बड़ा लाभ होगा। आपके घर पर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आएगा तो आपके घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा फिर कचरा कैसे साफ होगा। इसी प्रकार हमारे अंदर का कचरा है वो निंदक साफ कर देता है। उल्टी गत गोपाल की भगवान की गति बड़ी विचित्र है समझ में नहीं आती। आओ आओ बढ़िया बात चली पहली पहली लाइन सुन ली गई। झाड़ू वाला घर में नहीं आएगा तो कचरा घर में इकट्ठा हो जाएगा तो कचरा कैसे साफ होगा। इसी प्रकार अंदर का कचरा निंदक साफ कर देता है। उल्टी गत गोपाल की भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उल्टी यही है कि सारी दुनिया मान बड़ाई को चाहती है जो हमारे में गुण है ही नहीं उन गुणों का यदि कोई वर्णन करता है तो मन बड़ा खुश होता है। कितनी उल्टी बात है ये। मान बड़ाई मत चाहो इसमें कल्याण है। जैसे सांप बिच्छू को देखकर भगते हो ऐसे मान बड़ाई को देखकर भगो। जीवा रूपी बुहारी से हृदय रूपी टोकनी में निंदा रूपी मेला कभी मत भरो। हर एक 15 मिनट में भगवान को याद करने का नियम बना लो। इसको यहां तक करो कि 15 मिनट में हजारों बार भगवान याद आ जाए शीघ्र कल्याण होगा। भगवत प्राप्ति में सत्संग और साधन भजन ध्यान नाम जप सभी शामिल है। यदि सब नियम पालन नहीं हुए तो केवल एक नियम पाल लो कि भगवान को याद करना है किसी भी उपाय से करो। भगवान का निरंतर स्मरण करें तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है अपिचेत सुदुराचार्य है। भगवान के भजन बिना चाहे लाख काम हो जाए वे काम किसी काम के नहीं है। सबसे मुख्य काम भगवान का भजन है। एक भगवान का भजन हो गया तो सब काम हो गए। भगवान की शरण हो जाने से भगवान हमारे हो जाते हैं। दुनिया के लोग आपके कभी होने वाले नहीं हैं। शरण हो जाने का मतलब यही है कि भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे। बड़ों की आज्ञा पालन करना, इससे उनके ऋण से मुक्ति होती है। बड़ों का जो ऋण है वो कैसे उतरे कि उनकी आज्ञा का पालन करो। परमात्मा की सेवा करने वाला उनकी पूंजी का अधिकारी होता है। मालिक चोरी अनाचार करे तो सेवक को उसका दोष नहीं लगता है, पति पाप करे तो स्त्री को दोष नहीं लगता है, गुरु पाप करे तो चेले को नहीं लगता है। यदि सेवा करने वाला हिस्सा नहीं चाहे तो उसका चित्त शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है। हर समय भगवान को याद रखो। और दो नंबर में सेवा है, दुखी अनाथ असहाय और अपने बड़ों की सेवा तो खोज खोज करके करनी चाहिए कि कैसे ये मुझे मौका मिले। हमारे यहाँ वैश्य जाति में दो मनुष्य सेवा करने में बड़े तैयार रहते हैं। एक नंबर में शिव कृष्ण जी डांगा और दो नंबर में बद्रीदास जी लोहिया बनारस में है। इसके बाद गंगा बाबू को ले सकते हैं, इनको पहले नंबर में नहीं ले सकते। इनके पहले और भी सेवा करने वाले हो चुके हैं, किंतु हमारे लिए तो वर्तमान में ये आदर्श हैं। ईश्वर की भक्ति छोड़कर सेवा का ही दूसरा नंबर है, क्योंकि यह सेवा ईश्वर भक्ति का ही अंग है। सेवा का भाव गीता में बताया है, कुछ बातें आपको और बताते हैं। सभा में सत्संग में किसी को लांग कर नहीं जाना चाहिए, नम्रता से नीचे हाथ करके झुक करके जाना चाहिए। इसका वर्णन महाभारत में भीमसेन और भगवान महावीर का संवाद आदर्श है। जबकि भीमसेन उस समय स्वर्ग में पुष्प लेने जा रहे थे, हनुमान जी बीच में बैठे हुए थे, पूंछ पसार कर। पूरी कथा नहीं दी है, कथा ऐसी आती है। तो भीमसेन ने कहा, हे बानर ये पूंछ हटाओ। हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं तो बुढ़ा आदमी हूं, ऐसी लांग के चला जा, क्यों मेरे से पूंछ हटवाता है। नहीं, किसी को लांग कर जाना अपराध है, सब में भगवान रहते हैं और भगवान को लांगना अच्छा लगता है, इसलिए पूंछ समेट वगैरह भैया मेरे में बल नहीं है तो ही उठा दे। अब वो भीमसेन वो उठाने लगा तो पूंछ नहीं उठी उससे। पूंछ नहीं उठने पर भीमसेन ने देखा मेरे जैसा संसार में कोई बलवान नहीं और मैं एक पूंछ नहीं उठा सका इस बंदर की। तो भीमसेन को अपने अभिमान को कम किया और फिर हाथ जोड़ के कहा, हे बानर आप कौन है मैं पहचान नहीं सका। तो कहा कि तू और मैं दोनों भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूं तू छोटा भाई है, तू भी वायु का पुत्र है मैं भी वायु का पुत्र हूं, अपने में ये बल है ना, इसका अभिमान मत करो, तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए आया हूं। भीमसेन ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हो तो हमारे युद्ध में सहायता करो, पांडवों के पक्ष में हो जाओ। तब भगवान ने हनुमान जी ने कहा कि देखो आपके पक्ष में ही रहूंगा और प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करूंगा। जिस समय में तुम किलकारी लगाओगे ना, किसी को मारोगे किलकारी लगाओगे तो जोर से आवाज करोगे तो ऐसी आवाज तुम्हारे अंदर बढ़ा दूंगा और मैं कृष्ण भगवान के ध्वजा के अंदर जो मेरा चिन्ह है ना उसमें मैं रहूंगा। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ तो अंत में हनुमान जी ध्वजा से चले गए उड़ करके, तो ध्वजा में बैठ जाते। महाभारत का युद्ध का समय होता, हनुमान जी ध्वजा में आ जाते और बाद में चले जाते, दिखते नहीं थे। वायु पुत्र है, अब हवायु दिखती है क्या? अब ये पंखे की हवा कितनी आ रही है, सब हिल रहे हैं, यहाँ हवा लग रही है, दिखती थोड़ा ही है। हनुमान जी चले जाते हैं, आ जाते हैं, ये सहायता करूंगा। तो कहा इस सहायता से क्या होगा, किसी को मारो करो हमारे पक्ष में हो तब हो। तो कहा कि इससे बड़ी सहायता मिलेगी, जब विजय नाद करोगे तो शत्रुओं का हृदय दहल जाएगा, शब्द में बड़ी शक्ति है, तो मैं तुम्हारी बड़ी सहायता करूंगा। तो ये बात है कि इसका वर्णन महाभारत में भीमसेन और भगवान महावीर के संवाद से जान सकते हैं, जबकि भीमसेन उस समय स्वर्ग में पुष्प लेने जा रहे थे। असभ्य ढंग से मत बैठो, असभ्य ढंग से गया गोडा भरी उल्टो गुडा मार देनो, और या फिर यूं उकड़ू बैठ जानो, या फिर गोडा ऊंचा कर बैठ जानो, कि असभ्य ढंग से मत बैठो। क्यों? इससे अपमान होता है, सभा का अपमान होता है। सेवा ही असली मेवा है, यह मेवा ऐसी ऐसा है कि इसे परम गति प्राप्त होती है। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने से वाणी के दोष नष्ट होते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करने से पवित्र वाणी का दर्शन होता है, पवित्र चीजें देखते हैं तो उससे अपने अंदर जाती है, तो वाणी का दोष मिटता है, बुद्धि विद्या ज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय करने से पापों से बचता है, और स्वाध्याय करने से ब्रह्म सनातन की प्राप्ति होती है। बच्चों के लिए बतावें कि बच्चों को माता पिता से रूठना नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा नहीं बने तो कोई बात नहीं, पर उनको दुख तो कभी नहीं देना चाहिए। माता से रूठना हुआ तो परमात्मा से रूठना हुआ, समझो। हम माता पिता की कितनी सेवा करें, कभी भी बदला चुका नहीं सकते हैं। जो माता पिता से असत व्यवहार करता है, उसका तो मुंह देखने में भी पाप लगता है। ऐसे आदमी की निंदा करने में भी पाप नहीं लगता। अभी शुरू में तो कहा कि निंदा करने से पाप लगता है, पर जो माँ बाप को दुख देता है और माँ बाप की सेवा नहीं करता और माँ बाप से असत व्यवहार करता है, उसकी निंदा करने में पाप नहीं लगता। प्रत्येक नियम भंग की एक माला इसलिए बताई है कि उसमें भगवान का नाम अधिक निकलता है। भगवान की स्मृति और नियम पालन होते रहे, इसलिए एक माला फेरने का नियम रखा है। जिसने समय से पालन किया उसने काल को जीत लिया। देखो एक विचित्र बात है, सत्संग के समय में माला नहीं फेरनी चाहिए, सत्संग के समय माला नहीं फेरनी चाहिए। लोग देखते हैं कि इधर तो माला भी हो जाएगी और इधर सत्संग भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। नहीं नहीं तो माला में ध्यान रहेगा और न सत्संग में ध्यान रहेगा, और मन में एक झूठा ही संतोष हो जाएगा कि हमने माला भी फेर ली, सत्संग भी हो गया। भगवान के ध्यान का पान करना अमृत पान है, सच्चा अमृत है। भगवान का ध्यान करो, उस समय जितनी दूरी में भगवान दिखते हैं वो तो सगुण है, और पास में जो दिखता है, खाली जगह दिखती है, वो निर्गुण भगवान है। ऐसे देखो, ये सगुण भगवान है राम रूप से कृष्ण रूप से, और पास की जगह में निर्गुण भगवान है, निर्गुण में से ही सगुण प्रकट हो गए। एक भगवान का ध्यान लग गया तो ऐसा समझो कि दुनिया के सारे कार्य हो गए। भगवान का ध्यान लगने से अंत समय में भगवान की स्मृति स्वतः हो जाएगी। ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधन है, कल्याणप्रद है। भगवान का ध्यान करो। जिसको जनेऊ लेने का अधिकार है और जिसने यज्ञोपवीत लिया है, गायत्री का जप करे। यदि गायत्री का अर्थ समझ में नहीं आए तो भगवान की तरफ ध्यान कर लो। गायत्री मंत्र का जाप करते रहो और भगवान का ध्यान करते रहो, या फिर अक्षरों को देख लो। श्रृंगार की सामग्री अपने पास मत आने दो, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री से विलासता बढ़ती है और अश्लीलता भी आती है। गायत्री जप के समय परमेश्वर का ध्यान रख ले तो एक माला फेरने का जो फल होता है वो 10,000 माला फेरने का हो जाता है। एक माला फेरेंगे 10,000 माला। ऐसे ही भगवान का ध्यान करते करते एक माला फेरे तो उसका फल 10,000 माला फेरने का होता है। ध्यान स्तुति और प्रार्थना, ये तीन लाभ गायत्री जप में है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि सत्कार्य में लगे। प्रभु को कृपा से हमारी बुद्धि निष्काम कर्म में लगे। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान का स्मरण करना, उसमें धीमई शब्द आता है, धीमई माने ध्यान करें। केवल गायत्री जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बरस तक 10 माला रोज गायत्री जप के जपने से सब पाप मुक्त हो जाते हैं। जिस ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या वैश्य को संध्या करने ही नहीं आती, वह केवल गायत्री मंत्र से अर्घ्य आचमन आदि दे सकता है, उसकी सब संध्या की विधि पूरी हो गई। स्वाध्याय वाणी का तप है। ज्यादा जोर लगाओ तो भगवान के नाम स्मरण में इसमें भूल मत करो। जैसे पहली सीढ़ी हर एक घंटे में भगवान को याद स्मरण करना, दूसरी सीढ़ी में आधे घंटे में याद करना, तीसरी सीढ़ी में 5 मिनट में याद करना, चौथी सीढ़ी में 1 मिनट में याद करना, पांचवी सीढ़ी में हर क्षण भगवान का स्मरण करना। बस 5वीं सीढ़ी पर भगवान है, सो शीघ्र चलना चाहिए। सज्जनों, ये बातें अपने को कहीं नहीं मिल सकती, ऐसी विचित्र बात। एक एक सीढ़ी बनी, 5वें पगोत्या पर भगवान ला दी। सर्वत्र ईश्वर बुद्धि होने से भय का नाम ही नहीं है। जहां मन बुद्धि नेत्र जावे वहां भगवान को देखो, सबको भगवान समझो। रास्ते में एक महात्मा पुरुष जाते हैं तो हम उनको रास्ता देते हैं। इसी प्रकार प्रभु सांप रूप से आ जाए तो उसको भगवान मानो। यदि सांप हमको काट जाए तो भगवान काट गए ऐसा मानो। ऐसा मान करके ये मानते हैं तो मृत्यु भी हो जाए तो नरक में नहीं जाओगे, मरोगे तो सही। एक नई बात बताते हैं। आप जंगल में गए, शेर आ गया और आपने मान लिया कि ओहो भगवान नृसिंह आ गए। आपने तो ऐसी भावना की और शेर आके आपको खा गया तो आपका तो कल्याण हो गया, क्योंकि आपने तो अपने को भगवान के द्वारा मारा हुआ समझा है। तो आपकी मुक्ति तो अब भगवान को करनी पड़ेगी। इससे बढ़कर और क्या सरल उपाय हो सकता है। और शेर के साथ द्वेष बुद्धि रखोगे मारेगा तो सही, परंतु भगवत बुद्धि के बिना उसकी मृत्यु पर, माने उसके द्वारा अपनी मृत्यु पर बुद्धि द्वेष से भर जाएगी तो फिर कल्याण होने का प्रश्न ही नहीं है। कोई आदमी किसी के बारे में पूछता है और हमें कोई कमी मालूम देती है तो हम यदि उसकी कमी बता देते हैं तो ये इसका नाम निंदा नहीं है, फिर भी संभाल करके रहना चाहिए। अभ्यास ऐसा करो, ऐसा अभ्यास करो भगवान का कि पास से यदि कोई स्त्री भी निकल जाए तो खबर नहीं रहे। ये अनुभव की बात है। देखो सेठ जी अब छिपा गए बात को। सेठ जी के तो इतनी दृष्टि विचित्र थी कि परिवार में उनकी भतीजी आती और कोई आती, उनको पता नहीं चलता है कौन है। तो किरी बेटी है, तो किरी बेटी है कि मैं तो हरि कृष्ण, अच्छा अच्छा हरि कृष्णा री बेटी है गे, अच्छा तो वो पहचानते नहीं, अनुभव की बात है। तो वो चुप हो गए, बात बदल दी। चित्त में वैराग्य रखना चाहिए। कई बात ऐसी बतलाई जाती है जो एक के पालन से कल्याण हो जाता है तो दूसरी बातों के अपने आप ही वो सिद्ध हो जाती है। सब पालन हो जाए तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। देखो इस संसार में रहो तो वैराग्य के साथ रहो, तब आपकी विशेषता है। भोगों में लिप्त होना तो पशुओं का काम है, मनुष्य का काम थोड़ा ही है। इसलिए भोग की अपेक्षा वैराग्य को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। बहुत ज्यादा तो मैंने इसलिए कहा है कि भोग के सामने तो वैराग्य की इतनी ऊंची स्थिति है कि उसके सामने भोग है ही नहीं, परंतु आप लोगों के अंदर वैराग्य की बहुत कमी देखता हूं, इसलिए कहता हूं कि भोग से वैराग्य ऊंचा है। वैराग्य ऊंचा क्या, बहुत ही ऊंचा है। ये वैराग्य भगवान की भक्ति करने से आती है और वैराग्य से भगवान की भक्ति बढ़ती है। जहां वैराग्य है वहां त्याग है और वहीं भगवान की भक्ति है। वैराग्य से हर एक साधन सहज हो जाएगा, चाहे ज्ञान होगो, चाहे भक्ति होगो, चाहे कर्म होगो। और विशेषता से वैराग्य होता है वैराग्यवान महात्माओं के संग से, उनकी दया से, उनके चिंतन से। वीतराग पुरुष का चिंतन करने से चित्त में अपने आप ही निरोध होता है। सत्संग साधन में बड़ा भारी सहायक है। जो बात एकांत में भजन साधन से नहीं मिलती वो सत्संग में तत्काल मिल जाती है। सत्संग से वैराग्य होता है, परमात्मा का ध्यान लगता है, सत्पुरुषों के पास बैठते हैं तो भगवान की तरफ स्वाभाविक वृत्ति जाती है। सत्पुरुषों का संग मिलता है तो वैराग्य होता है। स्त्रियों के संग से वैराग नहीं, राग ही बढ़ता है। सत्संग सारे साधनों की जड़ है और वैराग्य पैदा करने वाला है। महान पुरुषों का संग वैराग्य से भी बढ़कर है, इसलिए सत्संग करो। सत्संग के समान कोई पवित्र नहीं है। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम। गंगा जी भी सत्संग के बराबर पवित्र करने वाली नहीं है। गंगा जी तो एक जगह बहती है पर सत्संग सब जगह रहने वाला है। मनुष्य के पाप गंगा स्नान से दूर होते हैं और गंगा के पाप महान पुरुषों के चरण पड़ने से पवित्र होती है। तो सत्संग बड़ा हो गया गंगा से। माने गंगा पाप दूर करती है, वो पाप गंगा जी में मिल गए। अब कोई महापुरुष जाकर इस पानी में स्नान करता है तब गंगा जी पवित्र होती है। तो जो महापुरुष सत्संग किए हैं तो उनके स्नान से गंगा स्नान, गंगा का पाप दूर होता है। कितना बड़ा सत्संग का लाभ है। सोना पानी से धोने से पवित्र होता है। किसी वस्तु को मैला लग जाता है तो वह पानी से धोने से या पानी में डालने से पवित्र होता है, और सोना पानी के पानी से धोने से पवित्र होता है। महात्मा का चिंतन हम करें तो या तो वे हमारा चिंतन करें तो हमारा कल्याण है, या हम उनका चिंतन करें तो कल्याण है। हमारे बुरे परमाणु से महापुरुषों पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे बुरे परमाणुओं का महापुरुषों पर असर नहीं पड़ता। कोई यह समझे कि भाई महापुरुष तो बड़े ऊंचे परमाणु वाले हैं, हम उनका संग करेंगे तो हमारे गंदे परमाणु महात्मा में लगेंगे, ऐसा यदि सोचे, इसका ये सोच गलत है। महापुरुष तो अग्नि के समान होते हैं, अग्नि के अंदर सब कुछ जल जाता है। ऐसे ही मनुष्य महापुरुषों का दर्शन स्पर्श भाषण करे तो हमारे अपवित्र संस्कार और परमाणु उनके अंदर जल जाते हैं। इसलिए सत्संग होता रहे, कल्याण में कोई शंका नहीं है। सद्गुण सदाचार तो आते ही है, यदि नहीं आवे तो कल्याण होने में कोई शंका नहीं है। सद्गुण सदाचार सत्संग से नहीं आवे ऐसा कोई मानता भी हो तो भी सत्संग करो, कल्याण तो हो गई। नित्य निरंतर सत्संग करो। सत्संग करने से हमारे अंदर जो सत्संग के भाव है वो जागृत रहते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे अंगारा है उसको बराबर फूंक लगाते रहते हैं तो वो अंगारा चेतन रहता है, और यदि उसमें फूंक नहीं लगाते हैं तो अंगारा कोयला बन जाता है। इसी प्रकार सत्संग की जो सुनी हुई बातें हैं उनको जागृत रखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। श्रद्धा हो गई तो सब काम हो गया। आजकल श्रद्धा की बड़ी कमी है, ईश्वर मिलने में देरी क्यों है? अश्रद्धा के कारण। ईश्वर में प्रेम हो जाए तो कल्याण में विलंब है ही नहीं। सारे साधनों का फल ईश्वर का प्रेम है, और ईश्वर का प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। जिसके पास ईश्वर का प्रेम बसता है उसको कोई जरूरत नहीं है। प्रेम तो प्रभु से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रभु प्रेमी के अधीन रहते हैं। नरसिंह मेहता के अधीन हो गए, और क्या बोलते हैं भगवान कि नरसिंह बेचे तो बिक जाऊं, नरसिंह मारो सिर धड़ी। गोपियों में प्रेम था तो भगवान उनसे छाछ मांगते थे। यशोदा जी पूछती, बेटा कहाँ गया? तू कहाँ गया? उस गोपी के घर गया। क्यों गया? कि छाछ पीने गया। तो तेरे घर में छाछ नहीं है? कि नहीं माँ, उसके घर की छाछ बहुत अच्छी लगती है। प्रेम के कारण से छाछ मांगते हैं। प्रेम के कारण से गोपियां नचाती हैं तो वो नाचते हैं। प्रेम के कारण बिना बुलाए आ जाते हैं। विदुर जी के घर बिना बुलाए चले गए। विदुर जी तो राजसभा में थे और जाकर किवाड़ खटखटाया। विदुरानी ने पूछा, कौन है? कि माँ मैं हूं। पहचान गई आवाज, बेटा तू इस समय बहुत भूख लगी है माँ। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। प्रहलाद में प्रेम था, उसने भगवान को बुलाया नहीं था कि आप आओ और मेरी रक्षा करो, लेकिन प्रहलाद में इतना प्रेम हुआ कि भगवान को बिना बुलाए आना पड़ा। भगवान में प्रेम होने का उपाय क्या है वो उपाय बताते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करो, शरण हो जाओ, गुण गाओ, उनके अधीन रहो, उनकी स्तुति करो, और प्रभु में प्रेम कैसे बढ़े ऐसी लालसा जगाओ। प्रभु प्रेम कैसे हो ये पाठ ही करते रहो कि कैसे प्रेम कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े। उच्चारण में भी प्रेम, सुनने में भी प्रेम। अब प्रेम कैसे होता है इसके लिए तो जैसा आप संसार में प्रेम करते हो उस ढंग से भगवान में करो। संसार में कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको बताता नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसे भगवान में प्रेम करो और बताओ मत। प्रेमी से बढ़कर मुझे प्यारा कोई नहीं है, वह मुझको अतिशय प्यारा है। भगवान के इस सिद्धांत को ध्यान में रखो। भक्ति ज्ञान किसी मार्ग में चलने पर अंत में समता आती है, बिना समता के साधन नहीं है। और भगवान में अनन्य प्रेम हो गया तो प्रेम बड़ा है कि समता बड़ी है। आप प्राय करके प्रवचन में कहते हो कि समता रखो, समता रखो, अनुकूल प्रतिकूल में समता रखो। आज कहते हो कि प्रेम बढ़ाओ, अब क्या करें? तो उत्तर देते हैं कि आप उस बात को समझे नहीं है। जहां भगवान में प्रेम होगा वहां समता तो प्रेम के अंदर निवास करती है। कोई आदमी किसी को न्योता देवे, निमंत्रण देवे कि महाराज आप मारा तो भोजन करना हो तो महाराज कहे मैं एक लोग को नहीं आऊंगा, ही हमारे साथ टोड़ो है। अरे महाराज आपने दिया ही नहीं तो टोड़ो तो साथ में ही रहसी। ऐसे जिसको न्योता देते हो, घर में जो बड़ा होता है उसके साथ में उसके साथ वाले सब आते हैं। इसी प्रकार भगवान का प्रेम हो गया तो समता वगैरह तो प्रेम के टोले हैं, वो अपने आप ही आएंगे। समता कोई प्रेम को छोड़ करके थोड़ा ही होती है। आपकी अपनी आत्मा में जितना प्रेम है उतना किसी में नहीं है, और भगवान सबकी आत्मा है। सब में प्रेम होने से समता होती है, इसलिए ये दोनों बातें दिखने में अलग अलग दिखती होंगी पर है एक ही बात। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति के समान प्रेम होता है क्या? कि हाँ होता है, परंतु आत्मज्ञानी अंतरंग में सब आत्मा एक है ऐसा समझता है तब प्रेम पैदा होता है। साधना के प्रकार में भेद है किंतु मुक्ति में सब एक है। भक्ति मार्ग में यही हो कि प्रभु में हमारा प्रेम हो, और ज्ञान मार्ग में यह है कि हमारी सब में समता हो। साधक को यह लक्ष्य करके साधन करना चाहिए कि भगवान का ध्यान निरंतर चिंतन मुक्तिदायक है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है, लाभ देने वाला है, ऐसा समझ करके साधन करना चाहिए। बस कुछ भी हो हरदम भगवान की दया मानो, ऐसा मानो कि मेरे पर भगवान की अपार कृपा है, चाहे संसार की कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी खराब परिस्थिति आए, मन से आप यही मानो कि मेरे पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है, मेरे पर बहुत कृपा है। ऐसा मानने से बहुत बड़ा लाभ होगा, प्रसन्न रहे। ये सबसे बड़ा हमने आपको साधन बताया है, भगवान की कृपा माने और प्रसन्न रहे। हम तो भगवान की गोद में बैठे हैं, हमें किसका डर? कल मरते आज मरो, मृत्यु भी तो भगवान का ही रूप है। हमारे मस्तक पर प्रभु का हाथ है उनकी छत्र छाया है, ऐसा मानते रहोगे तो निर्भयता शांति अपने आप आएगी और आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। क्षण क्षण में दया समझे, बड़ी दया है, आनंद में मस्त रहे, धीरता वीरता निर्भयता प्रमुदिता सब आ जाएगी। वो जीता हुआ जीवन मुक्त है। जैसे ऊंचे महापुरुषों की स्थिति होती है वैसी इसकी हो जाती है। साधन में जोश बढ़ाओ, किसी प्रकार अपने में ढिलाई मत आने दो, फिर कोई शंका की बात नहीं है। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण रायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना।